भारत की मोदी सरकार ने विदेशी निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विदेशियों को भारत में परमानेंट रेजिडेंसी देने का फैसला किया है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी लगा दी हैं। इसी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़े हैं टीवी 18 नेटवर्क के एसोसिएट एडिटर प्रणय उपाध्याय साहब। सर, क्या जानकारी दे सकते हैं इस मुद्दे पर?
देखिए, पिछले दिनों भारतीय कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है, प्रपोजल था कि भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्यों ना विदेशियों को रेसिडेंसी दी जाए। अगर वो भारत में बसना चाहते हैं, यहाँ कारोबार करना चाहते हैं, तो उन्हें आसान और सहूलियत भरे नियम बनाए जाएं ताकि वो लोग आसानी से यहाँ आ सकें और यहाँ रह सकें। उनको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी और उसके बदले में निवेश की जो अपेक्षा है, तो उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं कि अगर वो मिनिमम 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें रेसिडेंसी मिल जाएगी यहाँ पे, वो यहाँ रह सकते हैं, उनका जो परमानेंट रेसिडेंसी जिसे कहा जाता है। कई देशों में इस तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन भारत में इस तरह की सुविधाएं, इस तरह के दरवाजे नहीं खोले। तो एक नया प्रयास है मोदी सरकार का, लेकिन अब ये कितना कारगर होगा, इससे कितने लोग आकर्षित होकर आएंगे और कितना निवेश करेंगे, ये अभी देखना होगा।
सर, बड़ी मोटी सी बात है, 10 करोड़ रुपया 18 महीने में लाना है, और या फिर दूसरा ऑप्शन भी है, करीब 25 करोड़ रुपया 36 महीने में लाना है। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में आना ज्यादा आसान है परमानेंट रेजिडेंसी लेना इस तरीके से भारत के मुकाबले।
ये हो सकता है संभव, क्योंकि इस तरीके की क्लॉज, इस तरीके के प्रोविजन हर जगह, हर मुल्क ने अपने यहाँ निवेश को आकर्षित करने के लिए, अपने आप को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाने के लिए किए हैं। और आप देखें कि दुनिया के कई मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, यूके में भी इस तरीके की सुविधाएं हैं। कई जो लोग हैं इसका गलत फायदा भी उन्होंने उठाया, विजय माल्या जैसे लोगों ने, लेकिन जिनके पास पैसा है, जो निवेश कर सकते हैं, वो बेहतर जगह की तलाश में होते हैं। भारत में ये अपेक्षा तो नहीं की जा सकती कि शायद ब्रिटेन से कोई व्यक्ति आके यहाँ रहेगा, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि ऐसे कई अफ्रीकी सेंट्रल एशियन मुल्क हैं जहाँ से लोग भारत आ रहे हैं और जिनके पास पैसा है, लेकिन वो यहाँ आके बेहतर, वहाँ अपने मुल्क के कंपैरिजन में जो बेहतर सुविधाएं हैं मिल सके उन्हें यहाँ पे, प्लस वो अपना निवेश कर सकें और प्लस उन्हें बेहतर इसका रिटर्न मिल सके। तो इस तरीके से भारत को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश जरूर है। हो सकता है कि इसमें आगे समय में कुछ और सुधार किए जाएं, क्योंकि ये तो उसके नतीजों से साबित होगा कि ये कितना अट्रैक्टिव साबित हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, भारत के लिए निवेश बहुत बड़ी जरूरत है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन है इस समय, भारत को अपनी कॉम्पिटेटिव एज बनाए रखनी है कि वो एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जिसमें व्यक्ति को वो आकर्षित कर सकें कि कोई अगर निवेश करना चाहता है तो यहाँ पे इकोनॉमिक फाइनेंशियल रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं और प्लस व्यक्ति को कारोबार करने की सुविधाएं हैं।
सर, एक और चीज जो मुझे वो करती है, इसमें सरकारी नौकरी का भी एक ऑफर है कि अगर आपके बच्चे, अगर आप ये निवेश करते हैं और परमानेंट रेजिडेंसी ले लेते हैं तो सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आपके बच्चे। मैं कहूँ जो भारतीय मूल के लोग हैं दुनिया भर में फैले हुए, उनके लिए एक ऑफर की तरह दिखाई देता है।
जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मल्टीकल्चर सोसाइटी है इंडिया और यहाँ पर अगर इस तरीके का ये प्रयास जो सरकार ने किया है कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस की तरह से अगर हम देखें दुनिया भर में जिस तरीके के मॉडल्स प्रचलन में हैं, इसी तरीके के मॉडल कई मुल्कों में हैं कि अगर आप परमानेंट रेसिडेंसी आपको मिल जाती है तो आपके बच्चे एलिजिबल हैं उस चीज के लिए, चाहे वो भारत में पैदा हुए हैं या नहीं हुए, उन्होंने अगर यहाँ लंबे समय तक पढ़ाई की है भारत में, और उसके बाद वो सरकारी नौकरियों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यही एक कॉम्पिटिटिव, जैसा मैंने कहा, कॉम्पिटिटिव एज देने के लिए कि ग्लोबली जो मॉडल्स हैं, जो अट्रैक्टिव फाइनेंस इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस हैं जो कंट्रीज, उनकी तर्ज पर एक मॉडल यहाँ बनाने की कोशिश हुई है। और जहां तक हम बात करें कि विदेशों में बसे भारतीयों का सवाल है, ये एक बड़ी चिंता का विषय रहा है 2002-03 में, जब सबसे पहले वाजपेयी सरकार ने कोशिश की थी कि एक आउटरीच शुरू किया था प्रवासी भारतीयों से, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय बनाया, एक प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई, लेकिन सरकार को उतना फायदा हुआ नहीं उससे जितनी की अपेक्षा है, जितना स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शंस किए गए थे। क्योंकि डायस्पोरा बहुत बड़ा है, सब जगह लोग मौजूद हैं, वो अपने मुल्क से प्रेम भी करते हैं, लेकिन मामला पैसे का है, इन्वेस्टमेंट का है, तो और इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति अपना नफा नुकसान देख के करता है। और भारत जैसे मुल्क में एक रोचक चीज ये है जिताज जी कि यहाँ पर रेमिटेंस दुनिया में शायद सबसे ज्यादा है
जी।
और यूपी और बिहार जैसे स्टेट जो है वो इस समय केरल से भी आगे, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा रेमिटेंस इस समय आ रहा है, लेकिन वो रेमिटेंस लोग अपने घर पे तो पैसा भेजते हैं, लेकिन सरकार की या किसी योजना में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा लगाने में जरा हिचक रहे हैं।
सर इसको तो बदलेंगे कैसे?
देखिए, इसी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने होंगे। एक व्यक्ति जो विदेश में बैठा है भारतीय, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होगा। अगर वो कॉन्फिडेंटली अपने कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके जो विदेशी दोस्त हैं या जो उसका पीयर है वो भी प्रेरित होगा कि भारत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। और अगर व्यक्ति अपने ही मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो मैं अपने किसी दोस्त को कैसे परस्यू कर सकता हूं कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करिए? तो इंडिया को अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है, बनाए रखना है, और इसीलिए ये इस तरह के सारे प्रयास हो रहे हैं। इसीलिए तो जैसे पिछले कुछ दिनों में इन्होंने कोशिश शुरू की कि प्रवासी का भारतीय दिवस जो है वो अल्टरनेटिवली किया जाए, एक बार विदेश में एक बार देश में, यानी सरकार आपके द्वार पहुंचे। जो आउटरीच है वो बढ़ाई जा रही है कि वहां इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, चाहे मेक इन इंडिया की ही हम बात करें, बड़े फ्लैगशिप तरीके से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए सरकार को जरूरत है। मेक इन इंडिया में जितना पुश की अपेक्षा की जा रही थी उतना नहीं आ पाया, तो इसीलिए एक नया थ्रस्ट देने की कोशिश होगी कि मेक इन इंडिया के अंदर जो भी सेक्टर्स हैं उन और बढ़ाया जा सके। जो छोटे और मझोले उद्योग हैं उनको मदद की जरूरत है। इसलिए ये जो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है या 25 लोगों को नौकरियां रोजगार देने का जो प्लेटफॉर्म है कि आप इतना इन्वेस्ट करिए कि 20-25 लोगों को रोजगार मिले, इस तरीके से छोटे और जो मझोले उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश है। स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा वेंचर फंड्स की जरूरत है भारत में, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसी स्कीम्स को प्रधानमंत्री बहुत पुश कर रहे हैं। तो सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं इनमें बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि आप देखें साउथ एशिया या एशियन आउटरीच के हिसाब से देखें तो भारत एक बहुत अच्छी जगह है जहां पे अगर आप बसते हैं तो एशिया के दूसरे हिस्सों में आप अप्रोच कर सकते हैं, कनेक्टिविटी सुधर रही है। तो इसी तरीके से एक हब के तौर पे आगे डेवलप किया जाए, यही प्रोजेक्शन है।
प्रणय उपाध्याय सर, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।